एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर आपका स्वागत है। वो जगह जहां हम दुनिया भर के जरूरी विचारों और किताबों की गहराई में उतरते हैं आपके लिए।
और आज हमारे हाथ लगी है एक ऐसी किताब जो पिछले कुछ सालों से लगातार चर्चा में है और शायद आज पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। हम बात कर रहे हैं फरीद जकारिया की किताब द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड की।
बिल्कुल प्रासंगिक क्यों?
क्योंकि हम सब महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। कल तक जो चीजें मतलब तय लगती थीं, आज उन पर सवाल उठ रहे हैं। शक्ति का केंद्र वो बदल रहा है।
हाँ,
ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस नई दुनिया की शक्ल कैसी होगी, अमेरिका की बदलती भूमिका क्या होगी।
बिल्कुल, और उसके लक्ष्य।
हाँ, और भारत जैसे देशों के उभरने के क्या मायने हैं, उनके लक्ष्य क्या होने चाहिए। ये किताब इन्हीं बड़े सवालों से जूझती है।
और इन सवालों पर सोचने के लिए फरीद जकारिया से बेहतर गाइड मिलना शायद मुश्किल है। उनके बारे में थोड़ा जानना दिलचस्प हो गया ना? फरीद जकारिया एक जाने माने भारतीय अमेरिकी पत्रकार हैं, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक।
हाँ, और उनकी कहानी काफी अनोखी है। भारत में पैदाइश, मुंबई में शुरुआती पढ़ाई, फिर अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज येल और हार्वर्ड से पढ़ाई, जहां से उन्होंने पीएचडी की। आज वो सीएनएन पर अपना बेहद चर्चित शो फरीद जकारिया जीपीएस होस्ट करते हैं, द वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते हैं, दुनिया भर के नेताओं से मिलते जुलते रहते हैं।
और पहले वो न्यूज़वीक इंटरनेशनल और मशहूर फॉरेन अफेयर्स मैगजीन के संपादक भी रहे हैं।
उनकी खासियत क्या है, क्या लगता है?
शायद उनका दोहरा नजरिया।
हाँ,
अमेरिका को अंदर से भी समझते हैं क्योंकि वो वहीं रहते हैं और काम करते हैं, लेकिन अपनी भारतीय जड़ों की वजह से वो बाहर से भी देख पाते हैं। दुनिया को सिर्फ अमरीकी चश्मे से नहीं देखते।
अच्छा,
अंतर्राष्ट्रीय मामलों, इतिहास और अर्थव्यवस्था की जो उनकी गहरी समझ है, वो उन्हें यह हौसला देती है कि वो बड़े बदलावों का विश्लेषण कर सकें, और वो भी मतलब बिना किसी शोर शराबे के, ठंडे दिमाग और तथ्यों के साथ।
तो चलिए अब किताब पर आते हैं, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। नाम सुनकर पहली बार में लग सकता है कि ये अमेरिका के खत्म होने या उसके पतन की कहानी होगी।
हाँ, ये कन्फ्यूजन हो सकता है,
लेकिन जकारिया शुरुआत में ही इस गलतफहमी को दूर कर देते हैं।
बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत अहम है। जकारिया साफ कहते हैं कि ये किताब अमेरिका के पतन, डिक्लाइन के बारे में नहीं है, बल्कि बाकियों के उदय यानी राइज ऑफ द रेस्ट के बारे में है।
बाकियों का उदय?
हाँ, मतलब दुनिया के कई और देश जैसे चीन, भारत, ब्राजील, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका पिछले कुछ दशकों में जबरदस्त आर्थिक तरक्की कर रहे हैं और अब वैश्विक मंच पर ज्यादा आत्मविश्वास और असर के साथ अपनी जगह बना रहे हैं।
तो ये अमेरिका की हार नहीं है?
नहीं, ये दुनिया के ज्यादा संतुलित होने की कहानी है।
जकारिया इसे बड़ा दिलचस्प नाम देते हैं, आधुनिक इतिहास का तीसरा महान शक्ति परिवर्तन, थर्ड ग्रेट पावर शिफ्ट।
हाँ,
पहला था पश्चिम का उदय, लगभग 15वीं सदी से शुरू हुआ जब यूरोप दुनिया पर हावी हुआ। दूसरा अमेरिका का उदय, करीब 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी में, जब अमेरिका सुपर पावर बना।
सही।
और अब ये तीसरा दौर चल रहा है, बाकियों का उदय।
तो किताब का मुख्य लक्ष्य आप कह सकते हैं ये समझाना है कि अमेरिका को और अमेरिकियों को इस नई हकीकत से कैसे निपटना चाहिए, एक ऐसी दुनिया जहां वो अकेले बॉस नहीं है। जकारिया इसी जीरो सम गेम नहीं मानते, यानी ऐसा नहीं कि दूसरों की तरक्की का मतलब अमेरिका का नुकसान ही हो।
अच्छा,
बल्कि वो रास्ता सुझाते हैं कि अमेरिका को अपनी सोच, अपनी नीतियों, अपनी वैश्विक भूमिका को इस बहुध्रुवीय दुनिया के हिसाब से ढालना होगा।
ढालना होगा।
हाँ, अपनी पुरानी ताकतों जैसे इनोवेशन, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए एक नई रणनीति बनानी होगी। दबदबे मतलब डोमिनेंस से ज्यादा प्रभाव, इन्फ्लुएंस पर ध्यान देना होगा।
चलिए इस बाकियों के उदय वाले विचार को थोड़ा और खोलते हैं। सकारिया सिर्फ हवा में बात नहीं करते हैं ना, वो ठोस उदाहरण देते हैं।
बिल्कुल, दुबई की आसमान छूती इमारतें, चीन का औद्योगिक महाशक्ति बनना, भारत का आईटी हब बनना।
हाँ, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कुछ देशों की तरक्की भी।
सही, ये सब दिखाते हैं कि आर्थिक ताकत अब सिर्फ पश्चिम तक सीमित नहीं रही। जकारिया बताते हैं कि कैसे दुनिया भर में गरीबी कम हो रही है, मध्यम वर्ग बढ़ रहा है, ये सब इसी बाकियों के उदय का नतीजा है।
तो ये सिर्फ कुछ देशों की कहानी नहीं बल्कि एक ग्लोबल ट्रेंड है।
हाँ बिल्कुल, और यहीं पर जकारिया एक और बहुत ही महत्वपूर्ण, शायद थोड़ी विवादास्पद बात भी कहते हैं।
क्या?
एक गैर पश्चिमी दुनिया का विचार।
गैर पश्चिमी दुनिया?
हाँ, वो कहते हैं कि जैसे जैसे ये देश अमीर और ताकतवर हो रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो पश्चिमी मूल्यों, लोकतंत्र के पश्चिमी मॉडल या पश्चिमी संस्कृति को पूरी तरह अपना लें।
अच्छा,
वो आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन तो कर रहे हैं, पर पश्चिमीकरण वेस्टर्नाइजेशन नहीं। मतलब
ये कि वो पश्चिमी टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था अपना रहे हैं,
हाँ।
लेकिन उन्हें अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल रहे हैं।
बिल्कुल, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो अपनी पहचान खोए बिना मॉडर्न बन रहे हैं।
जैसे चीन में कन्फ्यूशियस की विचारधारा का फिर से महत्व बढ़ना,
हाँ, या भारत में अपनी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान पर जोर देना, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। ज़कारिया कहते हैं कि इससे दुनिया ज्यादा विविध, डाइवर्स बन रही है, लेकिन शायद ज्यादा जटिल, कॉम्प्लेक्स भी।
क्योंकि अलग अलग देशों के अपने लक्ष्य हैं और वो अपनी भूमिका खुद तय करना चाहते हैं।
सही, इस बाकियों के उदय में जाहिर है एक देश का जिक्र सबसे ज्यादा होता है, चीन। ज़कारिया चीन को चुनौती देने वाला, द चैलेंजर कहते हैं।
लेकिन वो ये भी साफ करते हैं कि चीन कोई दूसरा सोवियत संघ नहीं है, वो कोई विचारधारा दुनिया पर थोपना नहीं चाहता।
हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। ज़कारिया के मुताबिक चीन एक बेहद यथार्थवादी, प्रैग्मैटिक देश है, जिसका पूरा ध्यान अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और देश के अंदर स्थिरता बनाए रखने पर है।
बल्कि ज़कारिया तो ये तर्क देते हैं कि चीन मौजूदा ग्लोबल सिस्टम का एक हितधारक, स्टेक होल्डर है।
हितधारक मतलब?
मतलब चीन को इसी ग्लोबल सिस्टम से, खासकर वर्ल्ड ट्रेड से, जबरदस्त फायदा हुआ है, तो वो इसे पूरी तरह से उखाड़ फेंकना नहीं चाहेगा।
अच्छा,
हाँ, वो अमेरिका के दबदबे को चुनौती जरूर दे रहा है, लेकिन सिस्टम के अंदर रहकर नियमों को अपने हक में मोड़ने की कोशिश कर रहा है।
बिल्कुल, लेकिन ज़कारिया चीन की चुनौतियों से भी आंखें नहीं मूंदते।
ये भी है,
वो बताते हैं कि चीन के अंदर भी बड़ी समस्याएं हैं, अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई, पर्यावरण का संकट,
और एक बड़ी चिंता चीन की आबादी का तेजी से बूढ़ा होना।
हाँ, ये सब चुनौतियां चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और उसकी वैश्विक भूमिका को कैसे प्रभावित करेंगी, ये देखना भी बाकी है।
चीन के बाद ज़कारिया भारत की तरफ मुड़ते हैं, जिसे वो सहयोगी, दी एलाय कहते हैं।
सहयोगी,
और वो तुरंत बताते हैं कि भारत का उदय चीन से कितना अलग है।
हाँ, बिल्कुल अलग।
चीन का उदय जहाँ ऊपर से नियंत्रित, टॉप डाउन और तेज रहा है, वहीं भारत का उदय ज्यादा बिखरा हुआ, नीचे से ऊपर, बॉटम अप, लोकतांत्रिक,
और अक्सर थोड़ा दीना और अव्यवस्थित सा लगता है।
हाँ, कह सकते हैं।
लेकिन ज़कारिया भारत की खास ताकतों पर जोर देते हैं, वो इसे सॉफ्टवेयर पावर कहते हैं।
सॉफ्टवेयर पावर मतलब?
यानी आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी में महारत, बड़ी संख्या में अंग्रेजी बोलने वाले लोग, दुनिया की सबसे युवा आबादियों में से एक,
डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहते हैं।
हाँ, वही, और सबसे अहम, भारत के लोकतांत्रिक मूल्य। इन्हीं वजहों से ज़कारिया मानते हैं कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार, नेचुरल एलाइज बन सकते हैं।
हालांकि वो ये भी मानते हैं कि भारत के सामने अपनी बड़ी चुनौतियां हैं।
बिल्कुल हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबी और सरकारी कामकाज की सुस्ती,
जो उसके वैश्विक लक्ष्य हासिल करने की राह में रोड़ा बन सकती हैं।
तो चीन और भारत जैसे देशों के उदय के बाद सवाल उठता है कि अमेरिका का क्या? ज़कारिया अमेरिका की ताकत को कम करके नहीं आंकते।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो मानते हैं कि अमेरिका आज भी सैन्य, आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश है।
बहुत अच्छा।
उसकी यूनिवर्सिटीज, उसकी इनोवेशन की क्षमता, दुनिया भर से टैलेंट को खींचने की ताकत, ये सब बेजोड़ हैं।
तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है?
ज़कारिया के अनुसार अमेरिका की असली चुनौती उसकी ताकत में कमी नहीं, बल्कि उसकी वैधता, लेजिटिमेसी और अधिकार, अथॉरिटी में आई गिरावट है।
अच्छा, वैधता और अधिकार में गिरावट।
हाँ, उनका मानना है कि शीत युद्ध जीतने के बाद और खासकर 9/11 के बाद हुए इराक युद्ध जैसे कदमों से अमेरिका दुनिया की नज़र में थोड़ा अहंकारी और एकतरफा, यूनिलेटरल लगने लगा। उसने दूसरों की सलाह या चिंताओं पर कम ध्यान दिया, जिससे दुनिया का उस पर भरोसा कम हुआ।
यहीं पर ज़कारिया अमेरिका के लिए एक नई भूमिका और नए लक्ष्य का सुझाव देते हैं।
हाँ, वो कहते हैं कि अमेरिका को अब सिर्फ अपनी सैन्य या आर्थिक ताकत के दम पर दुनिया चलाने की कोशिश छोड़नी होगी, उसे दूसरों का विश्वास जीतना होगा।
विश्वास जीतना होगा।
दबदबे की जगह प्रभाव पर जोर देना होगा। और ये प्रभाव कैसे बढ़ेगा?
कैसे जी?
ज़कारिया सुझाव देते हैं कि अमेरिका को एक वैश्विक संयोजक, ग्लोबल कन्वीनर की भूमिका निभानी चाहिए।
संयोजक
मतलब?
मतलब
एक ऐसा देश जो दुनिया की बड़ी शक्तियों को, पुरानी और नई दोनों, एक मेज पर लाए, ताकि ग्लोबल समस्याओं जैसे क्लाइमेट चेंज, महामारी, आर्थिक संकट, आतंकवाद का मिलकर हल निकाला जा सके।
एक तरह का ईमानदार मध्यस्थ या फैसिलिटेटर।
बिल्कुल, इसके लिए अमेरिका को बहुपक्षवाद, मल्टीलेटरलिज्म को अपनाना होगा, अपने गठबंधनों को मजबूत करना होगा और अपनी सॉफ्ट पावर का समझदारी से इस्तेमाल करना होगा।
सॉफ्ट पावर यानी संस्कृति, शिक्षा, मूल्य।
हाँ, ज़कारिया के लिए 21वीं सदी में असली ताकत वैधता से आती है, लेजिटिमेसी से आती है, भरोसे से आती है। अमेरिका का लक्ष्य यही भरोसा दोबारा हासिल करना होना चाहिए।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस किताब से कुछ खास बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे लिए पहली और सबसे बड़ी बात तो यही है कि दुनिया का बदलना यानी बाकियों का उदय, इसे खतरे की तरह नहीं देखना चाहिए।
हाँ, ये एक सकारात्मक बदलाव भी हो सकता है। करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं, दुनिया में नए विचार, नई ऊर्जा आ रही है।
दूसरी अहम बात जो मुझे सोचने पर मजबूर करती है वो है आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण का फर्क। क्या तरक्की करने का मतलब अपनी पहचान, अपनी संस्कृति छोड़ देना है? ज़कारिया कहते हैं नहीं,
देश अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी मॉडर्न बन सकते हैं।
भारत में हम रोज इस कश्मकश को देखते हैं, है ना?
बिल्कुल। कैसे अपनी परंपराओं और मॉडर्न दुनिया के बीच संतुलन बनाया जाए, यह हर समाज के लिए एक बड़ा सवाल है।
तीसरा बहुत सीधा सा संदेश है, आर्थिक तरक्की ही ताकत की नींव है।
एकदम।
जैसे जैसे देश आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, दुनिया में उनकी आवाज भी बुलंद होती जाती है।
ये बात भारत जैसे देशों के लिए अपने लक्ष्य तय करने में बहुत मायने रखती है। सतत और समावेशी विकास ही वैश्विक भूमिका को आधार देगा।
चौथी बात ये याद रखना भी जरूरी है कि अमेरिका अभी खत्म नहीं हुआ है।
नहीं, ज़कारिया बार बार उसकी स्थायी ताकतों का जिक्र करते हैं, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज
और दुनिया भर के टैलेंट को अपनी ओर खींचने की क्षमता।
हाँ, ये चीजें अमेरिका को अभी भी बहुत खास बनाती हैं।
पांचवा संदेश है सहयोग की जरूरत।
बेहद जरूरी।
आज की दुनिया की समस्याएं इतनी बड़ी और आपस में जुड़ी हुई हैं कि कोई एक देश, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अकेला उनका हल नहीं निकाल सकता।
सही बात है। क्लाइमेट चेंज से लेकर आतंकवाद तक सबको मिलकर ही काम करना होगा।
और शायद इन सबसे ऊपर जो बात पूरी किताब में गूंजती है वो है बदलाव को अपनाने की जरूरत।
अनुकूलन, एडाप्टेशन।
हाँ, जो देश, जो समाज, जो कंपनियां और यहाँ तक कि जो व्यक्ति बदलाव को समझेंगे, सीखेंगे और उसके हिसाब से खुद को ढालेंगे,
वही इस नई दुनिया में कामयाब होंगे। विरोध करने या डरने से बात नहीं बनेगी।
ज़कारिया की लिखने की शैली भी कमाल की है। कुछ बातें सीधे दिल पर लगती हैं, जैसे उनका ये कहना कि यह अमेरिका के पतन के बारे में नहीं बल्कि बाकी सभी के उदय के बारे में है।
बिल्कुल, ये एक लाइन ही पूरी बहस का नजरिया बदल देती है ना?
हाँ, डर की जगह एक नई हकीकत को स्वीकार करने की बात करती है।
हाँ, और ये भी कि पोस्ट अमेरिकन दुनिया स्वाभाविक रूप से एंटी अमेरिकन दुनिया नहीं है। ये पोस्ट अमेरिकन इसलिए है क्योंकि इसे अमेरिका के अलावा अन्य देशों द्वारा आकार दिया जा रहा है।
ये बात भी तनाव कम करती है, मतलब दुनिया अमेरिका के खिलाफ नहीं हो रही।
नहीं, बस अब मैदान में नए ताकतवर खिलाड़ी आ गए हैं जो खेल को अपने हिसाब से भी खेलना चाहते हैं।
एक और गहरी बात जो मुझे बहुत पसंद आई, जैसे जैसे देश अमीर और शक्तिशाली होते जाते हैं वे अधिक पश्चिमी नहीं बन रहे हैं,
वे अधिक आधुनिक और अधिक तीव्रता से स्वयं बन रहे हैं।
हाँ, ये दुनिया की सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने जैसा है। ये बताता है कि तरक्की का कोई एक ही रास्ता नहीं है।
बिल्कुल, और अमेरिका की नई भूमिका और लक्ष्य पर वो जो कहते हैं वो तो जैसे आज की कूटनीति का मूल मंत्र होना चाहिए।
क्या कहते हैं?
21वीं सदी में शक्ति की मुद्रा वैधता है।
वैधता।
अमेरिका को दुनिया के शासक से हटकर उसका ईमानदार मध्यस्थ और सहयोजक बनना होगा।
मतलब दादागिरी का जमाना गया, अब भरोसेमंद लीडरशिप की जरूरत है। वैधता ही असली करेंसी है।
एकदम।
तो ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी सोच पर क्या असर पड़ सकता है?
पहली चीज तो शायद ये कि हम दुनिया को हम बनाम वो वाले चश्मे से देखना कम करें।
हाँ, ये जरूरी है।
किसी दूसरे देश की तरक्की को अपनी हार मानना जरूरी नहीं। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, सबकी तरक्की में सबकी भलाई हो सकती है।
बिल्कुल।
और अगर बिजनेस या करियर के नजरिए से देखें तो मौके अब सिर्फ अमेरिका या यूरोप में नहीं हैं। भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, इन उभरते बाजारों में जबरदस्त संभावनाएं हैं।
लेकिन वहां कामयाब होने के लिए सिर्फ डिग्री या स्किल काफी नहीं होगी।
नहीं, वहां की संस्कृति, भाषा, जरूरतों को समझना यानी कल्चरल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी हो जाएगा।
एक नागरिक के तौर पर भी ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हम ऐसी नीतियों का समर्थन करते हैं जो दुनिया के साथ जुड़ने, सहयोग करने पर जोर देती हैं, या हम खुद को अलग थलग करने वाली सोच को बढ़ावा देते हैं?
सही सवाल है।
साथ ही ये किताब याद दिलाती है कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी अंदरूनी मजबूती में होती है। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, इनोवेशन, सामाजिक एकता।
हाँ, यही चीजें दुनिया में हमारी भूमिका तय करती हैं।
और सबसे आखिर में, शायद व्यक्तिगत स्तर पर, ये बदलती दुनिया हमसे भी बदलने की मांग करती है।
बिल्कुल, नई चीजें सीखने की ललक, अलग अलग नजरियों को समझने की कोशिश और बदलाव से ना घबराने का हौसला, शायद यही वो गुण हैं जो हमें भविष्य के लिए तैयार करेंगे।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा टेकअवे शायद ज़कारिया का आशावाद है।
हाँ, वो उम्मीद जगाते हैं।
वो चुनौतियों को मानते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जगाते हैं कि ये नई बहुध्रुवीय दुनिया ज्यादा स्थिर, ज्यादा समृद्ध और ज्यादा दिलचस्प हो सकती है,
बशर्ते हम, खासकर बड़ी ताकतें, समझदारी और सहयोग का रास्ता चुनें।
बदलाव डरावना हो सकता है, लेकिन ये अवसरों का दरवाजा भी खोलता है।
और श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़कर जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं।
क्या सवाल?
फरीद ज़कारिया के इस विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, इस उभरती हुई पोस्ट अमेरिकन दुनिया में भारत की विशिष्ट भूमिका, रोल क्या हो सकती है? और हमारे देश के लक्ष्य, गोल क्या होने चाहिए, अपनी अनूठी ताकतों और चुनौतियों को देखते हुए? इस पर विचार करें।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।